بجاؤ مردن، بجاؤ غریب المردن.
Thank you. Namah. का नाम लाते हुए सुखदेव जी वो नारद जी भ्रमण करते रहते हैं, सहस्त्र मुख वाले शेष जी जिनका गुणगान करते हैं, गुणगान गाते रहते हैं, जिनका नाम तमाम महापापों का महाप्रायश्चित है। अगर कोई कहे कि प्रभु जी मैं बहुत पापी हूँ, पापियों में सिरमौर हूँ, भगवान जी कहते हैं भगवद्गीता में, यदि अगर तुम्हें पापियों में सर्वाधिक पापी भी समझा जाए तो बोलते हैं कि एकमात्र प्रायश्चित क्या है। अगर कोई कहे मैं महापापी हूँ, बोले पापी हो लेकिन एक चीज स्वीकार करोगे, बोले क्या, बोले नाम जपना पड़ेगा, निरंतर कृष्ण नाम लो तुम्हारे पाप से खत्म, अनेक जन्मों के अर्जित पाप खत्म हो जाएंगे। एक दो पाप की बात, पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाएगी, पाप तो छोड़ दीजिए, जो टेंडेंसी है वही खत्म हो जाएगी। वे प्रभु आज स्वयं ही नृत्य कर रहे हैं और तमाम भाग्यवान लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु जी जिनके जीवन प्राण हैं, वही वृंदावन दास ठाकुर जी अपने दोनों प्रभुओं के युगल चरणों के सानिध्य में उनकी लीलाएं गान करते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की यहाँ पर एक बात मुझे और स्मरण आई कि चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो ठाकुर हैं, हमारे जो प्रियतम हैं, जिनके लिए हमने अपना जीवन यहाँ पर समर्पित किया है, वही कृष्ण, वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वही स्वयं गौर हरि जी के रूप में जो प्रकट हुए राधा भाव के रूप में, वो भी क्या कर रहे हैं, नाम संकीर्तन में नृत्य करते हुए, क्योंकि नाम गान का मतलब है नृत्य करना। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र पर ना थिरक पाए या उसके चरण चलने ना लगे, नृत्य ना हुए, तो बोले उसने अभी नाम गान का रस का आनंद ही कहा लिया। निसंदेह है वो अभी विषयों का रस को ले रहा है, इसीलिए वो प्रभु के नाम में आनंदित नहीं हो रहा है। विषय छाड़िया से रसे मजिया मुखे बोलो हरि हरि परम करुणा प्रभु द्विजन निताई गौर चंद्र। जो लोग ये कहते हैं, सांसारिक ज्ञान का दिखावा करते हैं कि बहुत हमें चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, द्विवेदी हैं, कुछ लोग खाली वेदी भी होते हैं, वेदी एक वेद बस उनको नाम याद, ज्ञान का दिखावा करते हैं लेकिन प्रभु के कीर्तन में नहीं नाच पाते हैं। मायावादी सन्यासियों ने भी बोला था ना महाप्रभु को, आपको तो वेदों का अध्ययन करना चाहिए, वेदांत का, वेदांत दर्शन पर आप कहां ये नाच रहे हो, ये नाचने से क्या होगा। निसंदेह उनकी बुद्धि में माया घुसी हुई है जो ऐसा सोचते हैं। प्रभु के कीर्तन में इस्कॉन में कोई आया और नाचा नहीं तो बोले क्या आया है भैया, नाचो गाओ करो भक्त संगे संकीर्तन, यही है यहाँ का फिलॉसफी। आनंद मयोभ्यासा, अपने प्रभु के संग आनंद लेना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुख में 12 बजे जैसे मार रखा हो, आनंद लेना है। ये आनंद का विषय, यहाँ पर रोने का कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं, नाचना बुरा काम नहीं है, जब हमारे ठाकुर ही नाच रहे हैं तो औरों की क्या बात होती है। तो ये भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी भक्त भागवत है, अभी भागवत से ही पाठ करेंगे। आइए श्रील प्रभुपाद लीलामृत चैप्टर का नाम है बहुत कार्य करना शेष है। प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत कार्य करना बाकी रह गया है, तो यहाँ से 203 नंबर पेज के आखिरी पैराग्राफ से है। इलाहाबाद जनवरी 1971 कुंभ मेला पृथ्वी पर मानव जाति का सबसे बड़ा जमघट है। हर 12वें वर्ष समस्त भारत से साधु और तीर्थयात्री इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी तट पर इकट्ठे होते हैं और एक शुभ घड़ी में जिसमें स्नान करने से यात्रियों को विश्वास होता है कि वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, 1.5 करोड़ का व्यक्ति पवित्र जल में प्रवेश करते हैं। कुंभ मेले का एक छोटा सा संस्करण माघ मेला हर वर्ष माघ यानी कि दिसंबर जनवरी के महीने में होता है, किंतु जनवरी 1971 का मेला एक कुंभ मेले से दूसरे कुंभ मेले के बीच में पड़ रहा था और वह अर्ध कुंभ मेला कहलाता था। बड़ा अच्छा प्रश्न है, अभी हरिद्वार में भी क्या होगा, कुंभ मेला आ रहा है, पूर्ण कुंभ है ना, इसीलिए हर 12 साल के बाद आता है, तो वही उसी में प्रश्न चल रहा है। उसमें लाखों तीर्थयात्री आने वाले थे और श्रील प्रभुपाद ने उस अवसर का लाभ उठाने और अपने शिष्यों के साथ मेले में सम्मिलित होकर धर्मोपदेश करने का निर्णय किया, क्योंकि लोग आएंगे स्नान करके चले जाएंगे। सैव गोखरः यस्यास्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधी कलता दिशु भविज्यति यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन कर्हिचित् जनेषु अभिज्ञेषु सैव गोखरः। शास्त्र जो है ऐसे लोगों की तुलना जो तीर्थ स्थान या धाम में जाकर के केवल क्या करते, जो केवल वहां पर जाकर के क्या करते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं, केवल स्नान करने के लिए या फिर वहां घूमने के लिए पर्यटक स्थान बना करके घूम घाम के वापस आ जाते हैं, या अपनी ही जन्मभूमि को ही सर्वोपरि मानते, बस मेरी मातृभूमि, वो उसकी ही पूजा करूंगा, मैं जहां जन्म लिया वहीं के वासियों को भोजन दूंगा, वहीं के लिए सब कुछ करूंगा, इसी में पूरा जीवन बिता जाता है। तो बोलते हैं गो खरह, गो मतलब गाय, तो उनकी तुलना गाय और गधे से की गई। अब इसका मतलब क्या है, गाय कोई बुरा चीज है? नहीं जी, गाय मतलब वृंदावन में भी गायें हैं, लेकिन कितनी गायें जो है माला कर रही, बताइए, उनको माला करने का, उनके हाथ इस प्रकार से सुलभ हैं, मनुष्य शरीर सुलभ शरीर है। कर्मों के हिसाब से वहां पर गाय बने हैं जरूर, ऐसे कितने संसार में भी, दिल्ली में कितनी गायें हैं, क्या वो नाम जप पाती हैं, क्या वो कृष्ण कथा सुनने के लिए आ रही हैं? तो गाय बिल्कुल एकदम मूर्ख की तरह, जैसे कोई बात नहीं, कोई मार दे तो इधर को हो गया, कोई उधर भगा दे तो उधर भाग गया, कभी सब्जी में मुंह लगाया, कभी कुछ किया। और गधा तो आपको पता ही है नंबर, गधा किसको कहते हैं, पार्क के किनारे रोड के किनारे घास पड़ी रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मिलेगी वो, फिर भी वो सोचता है बोझा ढोने से शायद मिलते, इसलिए दिन भर बोझा ढोता है वो, और थोड़ी सी घास खा करके क्या होता है, मतवाला हो जाता है, जबकि घास पड़ी हुई है पार्क के किनारे। तो इसी प्रकार इन लोगों की तुलना केवल उनसे की गई है, क्योंकि तीर्थ स्थान जाते हैं तो इनको असली लाभ जो है कृष्ण प्रेम, क्योंकि मनुष्य जीवन करोड़ों जन्म हम बिता चुके हैं, एकाध जन्म नहीं, तो इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है, इस भाव से ये बात कही जा रही है। ऐसा नहीं कि कोई वृंदावन बता रखा है, कोई एक दफे वृंदावन पहुंच जाता है उसको मनुष्य योनि गारंटेड प्राप्त होगी, ये वृंदावन महात्म्य में बता रखा है। एक दफे कोई पूछे जो वहां पर बुरे काम कर रहा है, या केवल ड्राइवर लोग छोड़ने चले जाते हैं वहां पर, वो भी बोले पक्का बनेंगे, लेकिन बुरे काम का क्या फल मिलेगा, हो सकता है लंगड़ा बने, लूला बने, अंधा बने, बहरा बने, मनुष्य जरूर बनेगा, ये गारंटी है, ये वृंदावन धाम का फल है। लेकिन असली रतन, असली जो वास्तव में हमारा लक्ष्य है, वो तो प्राप्त नहीं किया ना, एक जन्म और गया, इस उद्देश्य से गाय और गधे के समान बताया जाता है। जबकि नहीं करने वालों से तो तब भी अच्छा है, कम से कम घूमने वृंदावन तो गए। लेकिन जब उच्च तत्व की बात आती है, तो यहां पर मेरे को जो कुंभ मेले के ऊपर थोड़ा सा बात याद आई कि अलाहाबाद जो है, अलाहाबाद को जब हम वेदों में, इसका नाम प्रयागराज से इसको विख्यात है, प्रयागराज तीर्थों में संगम, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां यहां पर मिलती हैं। हरिबोल। और वर्तमान नाम सम्राट अकबर ने दिया है इसको अल्लाहाबाद, मतलब अल्लाह का नगर, इसलिए अल्लाह अल्लाहाबाद अल्लाहाबाद बोलते हैं, अल्लाहाबाद अल्लाह का नगर उन्होंने दिया है। तो गंगा नदी के तट पर 14 प्रयाग हैं, जिसमें से प्रयागराज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, इंद्र का पुत्र जयंत उस कलश को लेकर स्वर्ग की ओर दौड़ा और असुरों ने उसका पीछा किया। देवता तथा असुरों में घनघोर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 12 दिनों तक चला तथा उस कलश का कुछ अमृत छलक गया जो पृथ्वी पर 4 स्थानों में गिरा। कौन से स्थान में गिरा? हरिबोल। पहला है मध्य प्रदेश उज्जैन, दूसरा महाराष्ट्र यानी कि नासिक में, तीसरा हरिद्वार उत्तरांचल हर की पौड़ी, और चौथा जो है इलाहाबाद प्रयागराज, जिसको संगम भी कहते हैं। तो स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर होता है, इसीलिए पृथ्वी पर अमृत गिरने के उत्सव को मनाने के लिए यहां पर संगम हर 12 साल पर कुंभ तथा 6 साल पर अर्ध कुंभ लगता है, एवं प्रत्येक वर्ष माघ मेला का आयोजन किया जाता है। वही अमृत अब भी विभिन्न राशियों के समय इन स्थानों पर आता है, वो अमृत आता है इसलिए लोग डबल बेनिफिट लेने के लिए जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त तो क्या करने जाते हैं, तीर्थंती कुर्वाणी तीर्थंती, भगवान के शुद्ध भक्तों की तुलना बता रखी है, वो तो गंगा जी के जो पाप छोड़ जाते हैं उन पापों को लेने जाते हैं। और समस्त लोगों को निसंदेह गंगा जल में, गंगा जी में जैसे भगवद गीता के महात्म्य में बता रखा है कि गंगा जी से भी मुक्ति मिलती है, गंगा जी में स्नान करने से भी, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ क्या हुआ, गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है और मुख से भगवद गीता निकली है, लेकिन भगवद गीता का मलिने मोचनम पुनसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, यहां तक कि गंगा जी में भी स्नान करके लोगों के अंदर की प्रवृत्ति नहीं जाती है, लेकिन हरि कथा सुनने से, तो भगवान की कथा सुनने से तो अंदर के जो पाप की प्रवृत्ति है करने की, वो सब खत्म हो जाते हैं। पाप बीज कूट प्रारंभ सारे सब प्रकार से खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए भक्त लोग वहां पर सुनाने के लिए, हम लोग वहां पर सारी व्यवस्था किस लिए कर रहे हैं, वहां हरि कथा होए, लोग सब श्रवण करें और जिससे उनके जीवन में मंगल होए, क्योंकि लोगों ने हरि कथा सत्संग छाड़ी कैनू असते विलास से कारणे लागी तुमी कर्म बंधन फांस। सत्संग छोड़ दिया है लोगों ने, सत्संग मतलब भगवान का संग करना। भगवान का संग का मतलब क्या है, 2 घंटे जो लोग हम जप करते हैं ये डायरेक्ट कृष्ण की एसोसिएशन है डायरेक्ट, क्योंकि कृष्ण में और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। और ये जो कथा सुनते हो कानों के माध्यम से, ये भी कृष्ण का संग है, डायरेक्ट संग किया, क्योंकि कृष्ण की कथा में और उनमें कोई अंतर नहीं है, उनकी वाणी में साक्षात भगवान उसमें वास करते हैं। इसीलिए भक्तों को चलते फिरते तीर्थ कहा गया, क्योंकि वो तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पुराण। भगवान कहते ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदय च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं वैकुंठ में ना मैं योगियों के हृदय में हूँ, कहाँ है प्रभु आप? बोले जहाँ मेरे भक्त लाइव मेरा कीर्तन करते हैं वहां मैं लाइव रहता हूँ, प्रकट रहता हूँ। संसारिक लोगों के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में अंगुष्ठ के रूप में रहते हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में तो राधा कृष्ण लाइव रहते हैं पूरे, भक्त उनको ढोते हैं जगह जगह, अलग से मंदिर। इसलिए सन्यासी जब परमहंस सन्यासी होते हैं, वो लोग सन्यासियों में भी 4 स्टेज, वो लोग डीटी को भी नहीं ढोते हैं फिर, वो तो सर्वत्र है इष्टदेव स्फूर्ति, स्थावर जंगम देखे काल देखे ना मूर्ति, उनको सर्वत्र इष्टदेव की स्फूर्ति होती है, उनको डीटी ढोने की क्या जरूरत है। साक्षात साक्षात क्या कर रहे हैं, राधा कृष्ण हृदय में ढो रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी जो है पेरिस में गए तो पेरिसेश्वर बना दिए, लंदन में गए तो लंदनेश्वर बना दिए, क्या शास्त्र में लिख रखा है? लेकिन आचार्य ने बोल दिया तो भगवान को कोई ऐतराज नहीं कि मुझे लंदनेश्वर क्यों बोला, ये तो शास्त्र में नाम नहीं है जी, ऐसा नामकरण मेरा किसी ने नहीं किया आज तक। प्रभुपाद कर सकते हैं। तो अलाहाबाद में ही देखिए प्रभुपाद जी की दीक्षा भूमि है अलाहाबाद। यह शहर में सोबतियाबाग में स्थित है, सोबतियाबाग। श्री रूप गौड़ीय मठ शिला प्रभुपाद 1932 में यहीं पर अपने गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत महाराज से, हरे कृष्णा सोइए नहीं हरि बोल, शिला प्रभुपाद 1932 में यहीं पर अपने गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत महाराज से विधिवत दीक्षा लिए थे। इसी गौड़ीय मठ का भूमि पूजन था, इसी अवसर पर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत महाराज आए थे 1932 में। आगे है प्रभुपाद जी का मकान। प्रभुपाद जी वहां पर 21 वर्ष तक मुख्य शहर में साउथ मलाका में स्थित है, यह उनका निवास स्थल था, जिससे वह 21 वर्ष इसी मकान में अपने परिवार के साथ बिताए थे। इसी मकान में उनके पिता गौर मोहन डे का निधन हुआ था तथा उनकी पत्नी से टी और मी के लिए झगड़ा हुआ था उसी मकान में। यहीं पर श्री प्रभुपाद जी की पांडुलिपि बेचकर उन्होंने चाय पी ली। इस घटना के बाद प्रभुपाद यहां से वृंदावन चले गए और अंत में संन्यास लिया उन्होंने। आगे प्रभुपाद जी की दुकान अलाहाबाद में प्रयाग फार्मेसी, तो यह मुख्य शहर में विवेकानंद मार्ग पर स्थित है। श्री प्रभुपाद इलाहाबाद में 32 वर्ष रहे, 20 वर्ष तक प्रभुपाद जी ने यहीं पर प्रयाग फार्मेसी के नाम से दवा की दुकान खोली थी और डिस्पेंसरी भी चलाई थी। तो प्रयागराज में रूप गोस्वामी जी ने, उसको बोलते हैं भीड़ी माधव मंदिर, वहीं पर रूप गोस्वामी जी के संग चैतन्य महाप्रभु 15 दिन ठहरे थे वहीं पर। चैतन्य शिक्षा मृत में से जो बड़ा सुंदर, वो भी वहीं पर उन्हें शिक्षा दे दी। और 10 अश्वमेध घाट है वहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे नाग वासुकी की जगह है। इलाहाबाद बहुत बड़ा साधारण नहीं है, प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज, प्रयागों का राजा। तो थोड़ा आगे पढ़ते हैं। जबकि प्रभुपाद जी के शिष्य ट्रेन द्वारा सूरत से इलाहाबाद के लिए चले, तमाल कृष्ण, हंसदूत, नंद कुमार और अन्यों को साथ लेकर प्रभुपाद थोड़े समय के लिए बंबई गए और वहां से कलकत्ता पहुंचे। इस बात का निश्चय करने के लिए कि दाई निप्पान द्वारा जहाज से भेजी गई उनकी पुस्तकें सिंधिया कंपनी के माल गोदाम में सुरक्षित रूप में रख दी गई थी, उन्होंने इलाहाबाद से इलाहाबाद ले जाने के लिए राधा कृष्ण की 24 इंच की पीतल की मूर्ति भी खरीदी। 11 जनवरी को उन्होंने लिखा, कल सवेरे हम लोग अर्धकुंभ मेला उत्सव में शामिल होने के लिए इलाहाबाद जा रहे हैं। हम 40 भक्त एक साथ जा रहे हैं और माघ मास में वहाँ 70 लाख अन्य भक्तों के पहुँचने की आशा की जाती है। 70 लाख। करीब 25 भक्त सूरत से ट्रेन द्वारा इलाहाबाद के लिए चले थे और अन्यों के जो संयुक्त राज्य और इंग्लैंड से नव आगंतुक थे शीघ्र आने की आशा थी। 23 घंटे की रेल यात्रा के बाद भक्तों का पहला दल इलाहाबाद पहुंचा। जब वे गाड़ी से उतरे तो उन्हें केवल कोहरा दिखाई दिया। एक ब्रह्मचारी आश्रम का पता लेकर जहां मेला स्थल में अपना तंबू गाड़ने के पहले उन्हें ठहरना था, वे आगे बढ़े। भक्तों को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा। जब वे कई घोड़ा गाड़ियों में सिमट कर बैठे और निर्धारित ब्रह्मचारी आश्रम की ओर चले तो उन्होंने सुन रखा था कि त्रिवेणी में नहाने के लिए कुंभ मेला का अवसर सबसे शुभ होता है और उसका जल बर्फ जैसा ठंडा होता है, तभी तो पाप पूरे जाते हैं। कोहरा से भरी उस प्रातः मेला में उन्होंने देखा कि तीर्थयात्री सड़कों पर जा रहे थे, कुछ ऊँटों पर सवार थे और सिपाही राइफल लिए थे। सूर्योदय के समय आश्रम में पहुंचकर उन्होंने अपने सामने पवित्र गंगा को देखा। दूसरे दिन सवेरे भक्त तीर्थ स्थल के लिए चले। वे उन तीर्थ यात्रियों की धारा में मिल गए जो त्रिवेणी की ओर जा रही थी। रामबाग रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए उन्होंने सूचना पढ़ी, इस स्थान से पवित्र गंगा और यमुना का संगम और किला 5 किलोमीटर है। बाइसिकल रिक्शों में सवार भक्त तीर्थ यात्रियों की आगे बढ़ती धारा में मिल गए और शीघ्र ही उन्होंने अपने सामने खेमों का वह नगर देखा जो अभी केवल 1 सप्ताह पहले खाली मैदान था। छोटे खेमों से, बड़े खेमों से और विशाल पंडाल से जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थी, अजामिल ध्वनियों का, अनामिल ध्वनियों का कोलाहल उठ रहा था जिसमें संगीत लाउड स्पीकरों से विभिन्न भाषाओं में होती घोषणाएं, भजनों और प्रार्थनाओं का अनुगूंज सबका मिश्रण था। तो इसको यहीं तक पढ़ेंगे। तो यही आनंद का जीवन है। जैसे मैं आज चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था, ऐसे ही आज कौन सा उसका प्यार है, तो उसमें भी यही बताया था कि भक्तों की तुलना भंवरों से की गई है, भंवर, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की तुलना मधु से की गई है। तो भक्त उस मधु का आस्वादन करते हैं भक्त लोग, और बोलते हैं कि जो जैसे कुत्ता है, कुत्ते जैसा अभक्त, बोलते हैं उससे ज्यादा अभक्त कौन होगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि तुलसी का पौधा भी मिल जाएगा तो उसमें भी वो पेशाब कर देता है, उससे ज्यादा अभक्त कौन होगा। बोलते ऐसा व्यक्ति भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों के बारे में थोड़ा सा सुन लेता है, थोड़ा सा उनकी लीलाओं के या उनके कीर्तन में भाग ले लेता है, वो भी पार हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शिवानंद सेन के संग भी एक कुत्ता आया था, एक भगोड़ा कुत्ता, प्रभुपाद जी भगोड़ा ऐसे ही मतलब घूमता हुआ। तो बोलते हैं उन्होंने भी उसको क्या किया, गौर कीर्तन में शामिल कराया, उसने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए और वो धाम वापस चला गया कुत्ता भी। तो अन्य लोगों के बारे में क्या कहा जाए, चैतन्य महाप्रभु के उस मधु का जो आस्वादन नहीं लेता है। तो जैसे तैसे हमने इस संप्रदाय प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस्कान संस्था भी एक शाखा है भक्ति वृक्ष की, चैतन्य महापुरुष की शाखाओं में से ऐसे करोड़ों अनगिनत शाखाएं बनी, अनगिनत भक्त बने चैतन्य महापुरुष में। तो हम सबको यहाँ बिल्कुल पूर्ण विश्वास से लगे रहना है और एक दूसरे को सहयोग करते हुए आनंद से हरे कृष्ण, यही पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, कृपया बातें ना करें जी। जी तो इसका यही है हल, अपराध छाड़ी लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। 64 प्रकार के सेवा अपराध हैं, 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं और 10 नाम अपराध, उसमें से भी दसवां ध्यान पूर्वक जप न करना भी अपराध है। ऊपर ही ऊपर तो ले रहे, राम नाम सब कहे ठग ठाकुर और चोर, चोर भी बोलता है भगवान दरवाजा खोल ही देते, कोई पकड़े नहीं मुझे, लेकिन नाम ले रहा है, लेकिन किस लिए ले रहा है, तो मूड क्या है, शुद्ध नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहां तक कि अगर कोई अपराध छोड़ करके, मान लिया अशुद्ध भी है वो, लेकिन ये विशेषकर 6 प्रकार के वैष्णव अपराध और 10 नाम अपराध है। 10 नाम अपराध है, जब हरिनाम चिंतामणि हम पढ़ते हैं, हरिनाम चिंतामणि में बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या की गई है, बहुत सुंदर ढंग से। तो लेकिन सुकृति इकट्ठा कर रहा है व्यक्ति, धीरे 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 क्या होगा, सनह सनह है। जैसे वाल्मीकि जी देखिए, जीवन भर मारे थे, उनसे मरा भी नहीं निकल रहा है, नहीं राम भी नहीं निकल रहा है, मरा मरा बोल रहे हो, उल्टा राम नहीं निकल रहा है, बताइए इतने पापी, लेकिन शुद्धता से नाम लिए और राम राम राम, मरा मरा राम 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 ना आके प्रभु आए भी नहीं, अभी उनसे पहले रामायण तैयार कर दी। वाल्मीकि अति दीन थे, बुरे कर्म में लीन थे, और क्या बोलते हैं, नाम लेकर के क्या किए हो, लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम आपका, भगवान का नाम लेकर के ही क्या हो गए हो, उन्होंने रामायण तैयार कर दी पहले से, जो सब लीलाएं अभी हुई भी नहीं है। तो निसंदेह धीरे धीरे जब व्यक्ति थोड़ा और ज्ञान लेगा, इसीलिए सत्संग सुनना जरूरी है कि उसको पता चलना चाहिए मैं क्या क्या अपराध कर रहा हूं। पहला अपराध तो यही है, जिन्होंने भगवान नाम के प्रचार में जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। जब तक अगर भगवान ने चाहा, अगली क्लासों से मैं 5 मिनट जो है उस किताब पर सब विषय वो डालूंगा प्रकाश, भागवत के बाद एक भक्ति क्रम विकास मार्ग की बाधाएं बड़ी सुंदर है, उसमें यह बता रखा है कि कोई अगर किसी की निंदा सुनता भी है, कह कुछ नहीं रहा है, अपने आप को सियाणा समझता है कि मैं सुन रहा हूं, कहते हैं कहने दो, जिसको कोई ना हल निकालता है ना ही उसको रोकता है, तो उसमें भी वो अर्जी साइन करने वाला जैसा है, जैसे कोई लेटर लिख के लाया और उसने अर्जी में साइन कर दिया, बोल कुछ नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब स्वीकृति तो है ना, मौनम स्वीकृति लक्षणम, चुपचाप सुन रहा है, ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा बस, अच्छा है। अगर वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते थे मेरे मूवमेंट को खतरा कहां से है, अपने अंदर के लोगों के द्वारा खतरा है, बाहर के लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, अंदर के लोग, जब अंदर के लोग एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की प्रशंसा सहन करने भी, कोई किसी भक्त की प्रशंसा कर रहा है, प्रभु जी बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रभु जी बहुत अच्छा गाते हैं, प्रभु जी बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, हाँ जरूर 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 संग कीजिए, जरूर संग कीजिए आप, बल्कि 4 और गुण बता दो, बोले ये हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए ऐसा भी नहीं है उसमें, वाह वाह। अपने अंदर जिस दिन हम निंदा छोड़ देंगे, आप उस दिन भक्ति का आनंद देखिएगा, न छोटे की, अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है उसको बोलो प्रभु जी हो सकता है आप ठीक हो या गलत हो, ऐसा करते हैं उनके संग बैठ लें, उन्हीं के संग बैठ जाते हैं, अच्छा वो तब बोलेगा किसने बोला, बोले वो प्रभु जी ने, उनको लाओ जरा वो भी। लोग को बोले तब वो आधे लोग वही मुकर जाते, नहीं नहीं मैंने कब बोला, कोई लोग लड़ने लग जाते आपस में दोनों लोग, मैंने कब कहा था ऐसा, मैंने कब बोला। फिर वो बोलेगा लास्ट में मेरे को इसने कहा था, अच्छा ठीक है उनको ही बुलाइए। दो मिनट में खत्म चीज, नहीं वो सुन लिया उसका हल निकाला ही नहीं, क्या फायदा था सुनने का। एक मिनट अगर गलत है वो व्यक्ति तो उसको बढ़िया से झाड़ पड़नी चाहिए, दोबारा सुनाई देगा वहीं पर खत्म हो जाएगा, दंड मिलना चाहिए उसका, दो मिनट में खत्म हो जाएगा सब। एक दूसरे की प्रशंसा जब तक ये शुरू नहीं होगा तब तक भक्ति का एक भी लक्षण अंदर नहीं आएगा, तब तक जो न तो आनंद आएगा न माला करने में आनंद आएगा। क्यों? एक भी व्यक्ति के प्रति, जैसे मान लिया मेरे को जीतानंद्र प्रभु जी के लिए कुछ संशय है थोड़ा सा, वो तो ऐसे है तो मेरे माला में इफेक्ट हो जाएगा, एक मिनट में माला में इफेक्ट हो जाएगा एक मिनट में। क्योंकि जब तक संसार में रहते हैं तब तक पाप होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अपराध होते हैं, छोटे छोटे अपराध। हम किसी को ढेसा मारते ही चल दिए, किसी के पैर में पैर रख गया उसको ये भी नहीं कि कृपया क्षमा करना, ऐसे ऐसे कर देते हैं तो वो सिस्टम ही कोई नहीं, कोई मतलब ही नहीं है कि कौन। जैसे मान लिया अपने से वरिष्ठ भक्त है, हम इज्जत देते हैं, ये रिस्पेक्ट की बात है, वो आगे है तो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, मतलब हम उनसे आगे हैं। आजकल कोई वही नहीं, पता चला वरिष्ठ भक्त के, वो वरिष्ठ भक्त को हमने आसन भी नहीं दिया और अपना उसमें सीधा आसन ले जा करके आसन में बैठ रहे हैं। एक दूसरे के लिए त्याग करना जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक वास्तव में जो है भक्ति का स्तर नहीं है। हो रही है, टाइम पास हो रहा है, ठीक है, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। पहले यहां तो जीना सीख लें, तब तो कृष्ण के धाम में जिएंगे, वहां तो भैया मैच्योर पर्सन है सब, और ये भेद बुद्धि खत्म होनी चाहिए, उसकी क्लास इसकी क्लास। अरे लोग संसार में ऐसे ही दुखी हैं, मैंने देखा उस क्लास में ना जाना उस क्लास, अरे कमाल है भैया, क्या डिफॉल्टर है वो, उस क्लास में ना जाना, अगर इस क्लास में ना जाना तो फिर उसको क्लास ही क्यों दे रखी करने को। भेद खत्म, जिसको कृष्ण कथा हो रही ना, परंपरागत कथा हो रही, उसको सुनो, जरूर सुनो, जाओ जहां से आपकी मति कृष्ण में लग रही, ये भाव होना चाहिए, ये मूड होना चाहिए। कोई यूथ जो है फैमिली के प्रोग्राम में मान लिया बैठ गया, फैमिली वाला यूथ में बैठ गया, क्या प्रॉब्लम, कोई बात नहीं बैठिए, नो प्रॉब्लम, बैठो सुनो, बाद में बोल दिया उसको थोड़ा सा हम लोग इस दिन से कर रहे तरीके से, तो तब आनंद जीवन, क्योंकि हम सब लोग मिल करके धाम जाना है ना हमने। हरे कृष्ण, सॉरी प्रभु जी, मैं उसके कहां से थोड़ा आगे तक हो गया जी। प्रभु जी,
परामर्श में
लेकिन वो अपने आदर्श से सिखा रहे हैं कि अभी हम सब परमहंस नहीं है, इसीलिए संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, वो संख्या पूर्वक नाम भी जपते थे, देखते थे कितनी भी करके हम लोगों को सिखाने के लिए डीटी भी करी हम लोग उसे, आपने आचार्य कही करी प्रभु जी वे सिखाए, ठीक है कि नहीं। उत्तम हैया अपना के अधम माने, उत्तम है लेकिन अपने आप को दीनहीन मान रहे, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, श्री महोत्सव की, उपस्थित भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे की।
ये कुछ हमारे पर भाव ऐसे जो हमें बहुत ही भक्ति में दिन मतलब गरीब हो जी,
भक्ति में गरीब है।
देखो वंशीनाथ बाबा जी थे,
बोल इसको बंद करना, कभी ध्यान रहना चाहिए आपको, बंद करिए।